ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 8 नारायण कवच श्लोक संख्या 14 और 15। 14 में तात्पर्य नहीं है तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले 15 नंबर श्लोक की आवृत्ति करते हैं।
रक्षत्व सोमाध्वनि यज्ञकल्प।
आवृत्ति करिए आप लोग। चौदह परपट नहीं है ना, 15 लिखना चाहिए था। ठीक है, 14 नंबर का आवृत्ति करनी है।
दुर्गे स्वटव्याजि मुखादिषु प्रभु। दुर्गे स्वटव्याजि मुखादिषु प्रभु। पायानि सिंहो असुरयूथ पारी। पायानि सिंहो असुरयूथ पारी। विमुच्यतो यस्य महाट्टहासम्। विमुच्यतो यस्य महाट्टहासम्। दिशो विने दुर्निर्पतंश गर्भा। दिशो विने दुर्निपर्तंश गर्भा। दुर्गे स्वटव्याजि मुखादिषु प्रभु। पायानि सिंहो असुरयूथ पाणी। विमुच्यतो यस्य महाट्टहासम्। दिशो विने दुर्नयपतंश गर्भा।
माता जी, शब्दार्थ दुर्गेशु दुर्गम स्थानों में, अटवी घने जंगल में, आजिमुख आदिशु युद्ध स्थल इत्यादि में, प्रभु परमेश्वर पायात वे रक्षा करें, नृसिंहा भगवान नृसिंह देव, असुर यूथप असुरों के नायक हिरण्यकशिपु का, अरिह शत्रु विमुच्यत छोड़ा गया, यस्य जिसका, महा अट्टहासम महान तथा भयानक अट्टहास, दिशः समस्त दिशाएं, विनेदुः अनुगुंजित नयपतन गिर पड़े, च तथा गर्भा असुरों की पत्नियों के गर्भ। अनुवाद हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंहदेव मेरी समस्त दिशाओं में रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। श्लोक संख्या 15, एक्चुअली श्लोक संख्या 15 पे ही मुझे बोलना था लेकिन गलती से श्लोक संख्या 14 लिख दिया गया, तो मैं पढ़ता हूं, इसके बाद इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। रचत्व सोमाध्वनि यज्ञ कल्प स्वदंष्ट योनि तधरो वराह रामो द्रिकूटे स्वत विप्र प्रवासे सलक्ष्मणो अव्याद भरताग्रजो अस्मान। अनुवाद परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वाराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी तीखी दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें, परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य राम तीन हैं, परशुराम जामदाग्न्य, दूसरे भगवान रामचंद्र तथा तीसरे श्री बलराम। इस श्लोक में आगतः रामो अद्रिकुटेश्व अथ में श्री परशुराम का संकेत है। महाराज भरत या लक्ष्मण के भाई भगवान रामचंद्र हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविकासान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामितिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित 7 दिनों में इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। इसकी खबर जब ब्रह्मा जी को मिली तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। ये कैसे संभव है। संसार से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, तप हैं, यज्ञ हैं। हाँ, इवन हम लोग जानते हैं कि यदि किसी को इस धराधाम से स्वर्ग लोक तक जाना हो तो कितने बड़े बड़े यज्ञों का प्राविधान करना पड़ता है, इसके बाद वो स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म लोक तक जाने के भी कुछ विधि हैं, और सर्वोच्च लोक जो वैकुंठ लोक है, भगवान का धाम, वहां जाना इतना आसान चीज नहीं है। लेकिन मात्र भागवत श्रवण करके परीक्षित महाराज उस परम गति को प्राप्त कर लिए, ऐसा सुन के ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य होता है। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि संसार से मुक्ति के लिए तो अनेक प्रकार के साधन हैं, तप हैं, यज्ञ हैं, और ये सब इतने प्रभावशाली नहीं हैं। भागवत का श्रवण इतना प्रभावशाली है, तो उन्होंने क्या किया, समस्त प्रकार के साधनों को बुलाया, जितने भी अनेक प्रकार के साधन हैं इस संसार से मुक्त होने के लिए, और एक बहुत बड़ा असेंबली बुलाया सभी, क्योंकि सत्यलोक में सब ऋषि मुनि रहते हैं, तो सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और अनेक साधनों को बुलाया गया, जितने प्रकार के साधन हैं इस संसार से मुक्त होने के लिए, सभी प्रकार के साधनों को बुलाया और श्रीमद् भागवतम को भी वहां लाया गया। तो श्रीमद् भागवतम और अन्य प्रकार के साधनों में यह साबित करना था कि वास्तव में कौन सी विधि श्रेष्ठ है इस संसार से मुक्त होने के लिए, जिसे शीघ्रता से हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार के साधनों को गट्ठर बनाया गया और उसको एक तराजू के पर्दे पर रखा गया, और श्रीमद् भागवतम को एक तराजू के पर्दे पर रखा गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम की तुलना में समस्त प्रकार के साधन हल्के पड़ गए, अर्थात श्रीमद् भागवतम को ही वो महान पद दिया गया जिसके श्रवण मात्र से इस संसार से बद्ध जीव आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां बैठे थे और सबके सामने परीक्षा की गई, और उसके बाद वहां समस्त ऋषि मुनियों ने निष्कर्ष निकाला, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना छ वस राष्ट्रद्यो वैकुंठ फल दायकम। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलयुग में भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम, भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम, कि ये जो भागवत है, भागवत क्या है, भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। यहां बताया गया भागवतम की उपाधि दी गई, किससे तुलना की गई, भगवत रूपम, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के अपने स्वधाम में जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को इस श्रीमद् भागवतम के अंदर रखा। हाँ, श्रीमद् भागवतम के अंदर अपने आप को रख के इस धाम से गए, इसलिए इस शब्द की व्याख्या कर रहे थे हमारे गुरु महाराज, तो बता रहे थे भगवत रूपम के ऊपर, इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है, वास्तव में इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लैपटॉप में, मोबाइल में लोड करके पढ़ने से इतना फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, भगवान के साक्षात रूप हैं, इनको मात्र छूने मात्र से, देखने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से भगवान की भक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान जब इस धाम से गए तो अपने आप को इसके अंदर रख के गए, भगवत रूपम। हाँ, मेनिरे भगवत रूपम। तो समस्त मुनियों ने निष्कर्ष निकाला कि इस कलयुग में जो श्रीमद् भागवतम है, भगवान का साक्षात रूप, हाँ, इसी शास्त्र को ही पढ़ने से, सुनने से तत्काल मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये बहुत ही परम पवित्र ग्रंथ है, हाँ, गीता भागवत। ये पर्याप्त है इस संसार से मुक्त करने के लिए। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान की, समाधि की, ध्यान की, योग की, वैदिक ग्रंथ की, पुराण की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण है इस संसार समय बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। तो ऐसे परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पे बोलने से पहले मैं आप सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। हरे कृष्णा। तो अभी प्रस्तुत प्रसंग नारायण कवच का चल रहा है, तो नारायण कवच है क्या? हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि नारायण कवच विश्व रूप द्वारा वैष्णवी विद्या के प्रभाव से एक स्त्रोत की रचना की गई है जिसको नारायण कवच बोलते हैं, और इसके प्रभाव से ये इतनी प्रभावशाली स्त्रोत हैं कि इसके प्रभाव से जो असुर शुक्राचार्य की कृपा से अजित बन चुके थे, जिनको कोई जीत नहीं सकता था, हम पीछे के प्रसंग पढ़ते आए हैं कि जब इंद्र का राज्य हिना ले लिया गया, सभी असुरों ने स्वर्गलोक पे विजय प्राप्त कर लिया, तो समस्त प्रकार के देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की दशा देखी कि किसी के अंग प्रत्यंग कट गए हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, शरीर से खून निकल रहा, तो बहुत ही छत बिछत सबका स्थिति था, तो ब्रह्मा जी को दया आ गई और सभी देवता लोग रो रहे थे कि आप मेरी रक्षा करिए, आप मुझे बचाइए असुरों के प्रकोप से। तो ब्रह्मा जी वहां बोलते हैं कि वास्तव में इस समय असुरों का प्रताप इतना बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि शुक्राचार्य की असीम कृपा है। हाँ, शुक्राचार्य की असीम कृपा के कारण, क्योंकि गुरु उनसे पूर्णतया प्रसन्न है। अभी बोलते हैं एक श्लोक में मैं पढ़ रहा था कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभान। चिंतामणि लोक सुखम, इस संसार में चिंतामणि क्या दे सकती है? बोलते हैं लोक का सुख, संसार का सुख। चिंतामणि से मनचाहा सोना आप कितना भी बना सकते हैं और इसे संसार का भोग कर सकते हैं। तो चिंतामणि लोक का सुखम, चिंतामणि से लोक का सुख दे सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? तो कल्प वृक्ष स्वर्ग का ऐश्वर्य दे सकता है, स्वर्ग का धन और ऐश्वर्य दे सकता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु खुश हो जाए, गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, महती कृपा, गुरु से प्रसन्न हो जाए उसकी भक्ति से, पर्यच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या दे सकते हैं? वैकुंठम योगी दुर्लभान, वो वैकुंठ पद दे सकते हैं जो कि योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। शीघ्रता से पद ऐसे वैकुंठ का दे सकते हैं यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो, लेकिन यदि वही गुरु अप्रसन्न हो जाए तो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्यात प्रसादात न गति कुतोपि, कि यदि गुरु कृपा होती है तो भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है, और यदि गुरु अप्रसन्न हो जाते हैं, गुरु कृपा नहीं करते हैं, तो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, उसका कोई गति नहीं होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहीं का भी नहीं होता है। और यही दशा अभी इंद्र की हो गई। हाँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वास्तव में शुक्राचार्य को उन्होंने अपनी गुरु भक्ति से प्रसन्न कर लिया है और उनके ऊपर पूरी कृपा शुक्राचार्य ने कर दी है, और उसके प्रताप से वो लोग इतने बलशाली हो गए हैं, तुम हमारे पास रोने के लिए आए हो, लेकिन इस समय असुरों का प्रताप इतना बढ़ा हुआ है कि वो चाहे तो ब्रह्मलोक को भी जीत सकते हैं, वो मुझे भी जीत सकते हैं, इतनी कृपा है उनके ऊपर कि ब्रह्मलोक तक भी वो लोग आ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक तक वो लोग ना आए उससे पहले, हाँ, आपने बृहस्पति का अपमान किया है, वो गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं, हाँ, और जिनसे जिनके ऊपर ब्राह्मणों कृपा होती है, गौ कृपा होती है, गोविंद की कृपा होती है, उनका अच्छा गति होता है। तो आपने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, गुरु का अपमान कर दिया है, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ और किसी ब्राह्मण को आप अपना गुरु बनाओ, अपना पुरोहित बनाओ, उनकी शरण में जाओ, और उनको विश्वरूप के पास भेजते हैं। पहले तो विश्वरूप राजी नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो राजी हो जाते हैं देवताओं का पुरोहिती करने के लिए, और विश्वरूप द्वारा इस वैष्णवी विद्या के माध्यम से इस नारायण कवच की रचना हुई, नारायण कवच का इस स्रोत की रचना हुई, और उसके प्रभाव से, हाँ, देवता लोग जो अपने ऐश्वर्य को खो चुके थे, उस मंत्र के प्रभाव से उनको शक्ति मिलती है, इंद्र को शक्ति मिलती है, और दोबारा वो असुरों को, जो असुर इतने प्रभावशाली हो चुके थे, जिनको जीतना बहुत कठिन था, खेल खेल में पराजित कर देते हैं और अपना ऐश्वर्य पुनः हासिल कर लेते हैं, खोए हुए ऐश्वर्य को, खोए हुए धन को प्राप्त कर लेते हैं। ये नारायण कवच के माध्यम से, इस विद्या के प्रभाव से। तो यदि हम पढ़ते आ रहे हैं नारायण कवच, तो इसमें क्या हमको पता चल रहा है? तो यदि आप पूरे पढ़ते जाएंगे नारायण कवच, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यही है कि भगवान के विभिन्न अवतारों से हाँ, रक्षा की आशा की जाती है। हाँ, कि ये भगवान मेरी इस रूप में रक्षा करे, इस जगह मेरी भगवान इस रूप में रक्षा करिए, भगवान मेरी ऐसी रक्षा करिए, भगवान मेरी ऐसी रक्षा करें। जैसे कि आज के प्रसंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तीन लोगों से रक्षा का आशा किया जा रहा है, श्री सीताराम रास बिहारी भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नित्य गौर सुंदर भगवान की, शिल प्रभुपाद की। तो तीन लोगों से रक्षा की आशा की गई है। पहला भगवान वराहदेव से कि भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें, दूसरा परशुराम जी से कि पर्वतों में मेरी रक्षा करें, और दूसरा तीसरा भगवान श्री रामचंद्र जी से कि विदेशों में मेरी रक्षा करें। हाँ, ऐसे अनेक आगे के श्लोक आते जाएंगे और आप देखेंगे कि हर जगह भगवान से रक्षा की गुहार की जा रही है, आशा की जा रही है कि भगवान मेरी रक्षा करें। मेन यही है नारायण कवच में कि भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन अवतारों से प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान आप मेरी रक्षा करें। मेन सीख यही है कि कैसे हमको भगवान पे डिपेंड रहना चाहिए रक्षा के लिए, आश्रित के लिए, क्योंकि ये संसार पदम पदम यद विपदाम। हाँ, इस संसार में पद पद पे संकट है, पद पद पे भय है, हर जगह सर्वत्र भय व्याप्त है, सर्वत्र दुख व्याप्त है। अभी मैं पढ़ रहा था आज का प्रसंग, तो जैसे भगवान वराहदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे वराहदेव आप मेरी मार्गों में रक्षा करें। हाँ, मार्गों में भी संकट है। कैसे संकट है, जस्ट मुझे एक चीज याद आया, आज से कुछ समय पहले, लगभग एक हफ्ता या 10 दिन पहले, अभी महाराष्ट्र के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, हाँ, गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हाँ, तो जस्ट एक दिन मेंटेनेंस ऑफिस में मैं गया था, वहां पेपर पढ़ा था, तो मैं देखने लगा, उसी को देखने लगा कि कौन है, क्या था, इतना महान व्यक्ति तो कौन थे। तो उसमें पढ़ रहा था तो एक मिनिस्टर ने बोला, हेडलाइन था उसमें, कि यदि गोपीनाथ मुंडे सीट बेल्ट पहने होते तो उनकी हत्या, वो मरते नहीं, यदि सीट बेल्ट पहने होते तो वो मरते नहीं। और एक व्यक्ति ने अपना वक्तव्य दिया था कि यदि उनका सिक्योरिटी गार्ड उस समय रहता तो भी वो नहीं मरते। दो लोगों ने अपना वक्तव्य दिया कि मरते नहीं, उनकी सुरक्षा हो जाती। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो जो कार दुर्घटना हुई थी, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके विषय में सुन भी सकते हैं कि ऐसी कार दुर्घटना बॉम्बे में 2-4 डेली होती है और कोई मरता नहीं है। इतना सरल कार दुर्घटना हुआ था, वो कोई बहुत विशेष टक्कर नहीं हुई थी, 2 कार आपस में लड़ी थी और बहुत तेज टक्कर नहीं हुई थी, सिंपल सा टक्कर हुआ था, दोनों गाड़ी का थोड़ा थोड़ा बॉडी बस पचका हुआ था, कोई विशेष टक्कर नहीं था, इवन ड्राइवर को भी कुछ खरोच नहीं आया, इतना सिंपल टक्कर था। वैसे टक्कर तो डेली लड़ते रहते हैं बॉम्बे के अंदर, इतना सरल टक्कर था वो। और गोपीनाथ मुंडे के शरीर के ऊपर भी कोई खरोच नहीं था, कोई चोट नहीं था, बाहरी कोई चोट नहीं था, वो बाहर गिरे, बस गाड़ी से नीचे गिर गए। गाड़ी से नीचे गिरना कौन सी बड़ी बात, थोड़ा सा ऊंचाई से नीचे गिर गए, कोई बड़ी चीज नहीं नीचे से ऊपर गिर जाना। इसलिए वो जो मिनिस्टर था लिखा था कि सीट बेल्ट पहने होते तो बच जाते, क्योंकि गाड़ी से नहीं गिरते हैं। लेकिन गाड़ी से गिरना कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा थोड़ा सा ऊंचाई पर से गिर जाना कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं हो सकता है। और वो गिरे, उन्होंने पानी भी मांगा पीने के लिए, हॉस्पिटल गए, शरीर के ऊपर कोई खरोच भी नहीं था, चोट भी नहीं था, और हॉस्पिटल जाके आधे घंटे में शरीर छोड़ दिए। हुआ क्या था, गर्दन का कोई नस पे, कोई नस काम करना, नस पे चोट पहुंच गया था, वो ब्रेक हो गया था, ब्लड का सर्कुलेशन माइंड में रुक गया और खत्म। तो मार्ग में रक्षा करें, मार्ग में मेरी रक्षा करें। तो ऐसे ही हर जगह पदम पदम यद विविदाम, हर जगह संकट है, हर जगह दुख है, हर जगह भय व्याप्त है। इसलिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक में प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, बालस्य नेह शरणों पितरो निशिंह नार्तस्य चागद मुदवंती मज्जनोनो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य यहाज श्रेष्ठ स्तावत विभो तनुभृताम तदुपेक्षिता नाम। बालस्य नेह शरणम पितरो निशिंह, हे नरसिंह भगवान, बालस्य नेह शरणम पितरो, कि पिता माता बालक की रक्षा नहीं कर सकते हैं। पिता माता से आशा की जाती है कि वो अपने बेटे की रक्षा करें। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, लेकिन नरसिंह भगवान बोलते हैं कि हे नरसिंह भगवान, माता पिता सुरक्षा नहीं कर सकते अपने बालक की। नार्तस्य चागद मुदवंती मज्जनो नो, नहीं कोई मेडिसिन, कोई औषधि, कोई डॉक्टर किसी रोगी की रक्षा कर सकता है? आशा की जाती है औषधि से, डॉक्टर से, कि लोगों के प्राण को बचाएं, लोगों को दुख से निवृत्ति करें, लेकिन रक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, और तप्तस्य तत्प्रतिविधेर यहां जसेष्टावत विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम मज्जनौ नौ कि यदि कोई नदी में व्यक्ति डूब रहा है, समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो एक नाविक से, एक नाव वाले से आशा की जाती है कि वो जाए और उस डूबते व्यक्ति को बचा ले, लेकिन वो रक्षा नहीं कर सकता है। इन लोगों से आशा की जाती है कि ये लोग बचा ले जीवन, एक माता पिता अपने बच्चे का जीवन बचा ले, एक डॉक्टर औषधि देके एक रोगी की जान बचा ले, और एक नाविक समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को बचा ले। हे भगवान, इन लोगों से आशा की जाती है कि लोग बचा ले, लेकिन तद उपेक्षितानाम, लेकिन ये लोग तभी तक किसी की जान बचा सकते हैं, प्राण बचा सकते हैं, जब तक आपका, आपकी इच्छा हो। यदि आप उपेक्षितान, यदि आप उपेक्षा कर देते हैं, यदि आपकी उपेक्षा हो गई, आप नहीं बचाना चाहते हैं किसी को, तो संसार में किसी को कोई नहीं बचा सकता है। संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। उपेक्षितान, हे नरसिंह भगवान, यदि आपने उपेक्षा कर दिया तो कोई कितना भी बलशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, किसी से किसी की कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रसंग में हम देख रहे हैं मेन क्या है, भगवान से रक्षा की आशा की जाती है। संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। यदि कोई किसी की रक्षा करता भी है तो भगवान जब तक चाहते हैं तब तक। यदि भगवान किसी को उपेक्षा कर देते हैं तो उसको कोई संसार में बचा नहीं सकता है। तो इस प्रकार इस संसार में सर्वत्र भय व्याप्त है, दुख व्याप्त है, सर्वत्र विपदा है। इसलिए भगवान के शरण में हमको यही शिक्षा यहां दी जा रही है नारायण कवच के माध्यम से, कि हमको सदैव भगवान से सुरक्षा की याचना करनी चाहिए, भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ इस शरीर की सुरक्षा की बात नहीं है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, शरीर की सुरक्षा करे भगवान, भगवान हमारे मन की भी सुरक्षा करें। क्योंकि वास्तव में संसार में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है, बंधन का कारण है, वो हमारा मन है। तो भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना कैसी करनी चाहिए वो भी भगवान बताते हैं। हाँ, इसलिए भगवान मन का बहुत जगह गीता में नाम लेते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मुझ में लगाओ। क्यों? क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। क्योंकि मन ही एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को संसार में बांध सकता है और व्यक्ति को संसार से निकाल सकता है। इसलिए मन के संदर्भ में भी भगवान से हमको याचना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरी मन की सुरक्षा करें, भगवान मेरे शरीर की सुरक्षा करें। हाँ, बहुत जरूरी भगवान सुरक्षा की याचना करना। हाँ, चलो संसार में बहुत सारे विपदाएं हैं, बहुत सारा दुख है, इस संसार को त्याग के, हमारे प्रसंग में है कि परशुराम से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारी जंगल में रक्षा करें, पहाड़ पे रक्षा करें, और भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे विदेश में रक्षा करें। विदेश मतलब जंगल, भगवान राम जंगल में तो गए थे। हाँ, तो जंगल में रक्षा करें, पर्वत पे रक्षा करें, मार्ग में रक्षा करें। तो इस प्रसंग के आशय से पता चल रहा है कि हर एक जगह सुरक्षा की आवश्यकता है, और भगवान के जितने विशिष्ट अवतार हैं वो अवतार कुछ निर्दिष्ट हैं अलग अलग स्थान पे मेरी रक्षा करने के लिए। जैसे इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और हर जगह सबका नियंत्रण है। हम लोग शरीर में तिलक लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? कि ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, जो 12 भगवान हम लोग लगाते हैं कि ये भगवान हमारी इस जगह की रक्षा करें, भगवान रक्षा करने के लिए शरीर का तिलक लगाया जाता है। तो उसी प्रकार हर जो भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के जितने नाम हैं, वो अवतार भिन्न भिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में नियुक्त किए गए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। स्थापित किए गए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कैसे हमको मन की सुरक्षा की भी आवश्यकता है और शरीर की भी सुरक्षा की आवश्यकता, और उसके लिए पूरा पूरा निर्भर है, हम निर्भर रहना हमको भगवान पे। तो बहुत अच्छा प्रसंग है भरत महाराज का। हाँ, कि भरत महाराज, क्योंकि संसार में बंधन है, इस संसार को प्रायः लोग त्याग के जंगलों में चले जाते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, और अपने आप को संसार से मुक्त होने का प्रयास करते थे। तो भरत महाराज भी गए जंगल में। हाँ, जंगल में गए, और ऐसा एक जगह में प्रसंग सुना कि जब जंगल में गए तो जहां वो तपस्या करते थे, जहां से उनका पतन हुआ, उनके बगल में ही कुछ दूरी पे एक ऋषि का आश्रम था। मैं भी शायद पुलह मुनि का आश्रम था कि किसी का आश्रम था, शायद पुलह मुनि का आश्रम था, क्योंकि हिरण का शरीर पाने के बाद वो उधर ही जाके घूमते थे। पुलह मुनि का आश्रम था और वहां के ऋषि मुनियों से उनकी एक बार भेंट हुई और वहां के ऋषि मुनियों ने कहा कि आप आ जाइए हमारे आश्रम में और हमारे आश्रम में आप रहिए, भजन करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, क्या प्रॉब्लम है। भरत महाराज ने बोला नहीं, मैं अपना अकेले तपस्या करूंगा, अकेले साधना करूंगा। हाँ, और लगे करने, और बहुत कठिन तपस्या किया, बहुत कठिन साधना किया, और कठिन साधना के बल पे, अपनी तपस्या के बल पे वो भाव स्टेज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? भाव स्टेज तक पहुंच गए। लेकिन भाव स्टेज पहुंचने के बाद थोड़ा मन उनका फिसल गया, थोड़ा मन उनका फिसल गया, और मन फिसल गया और भाव के बाद वो प्रेम की अवस्था में प्रवेश कर दे, जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वहां से फिसलने के बाद उनका 3 जन्म चला गया। तो ऐसा आचार्य लोग समझाते हैं कि मन की सुरक्षा की आवश्यकता है। यदि क्यों भागवतम के अंदर 2 घटनाएं ऐसी हैं जो कि बहुत क्लियर बताते हैं कैसे भगवान और भक्तों से सुरक्षा की आवश्यकता है। इवन हम भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, भौतिक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो भी मन के प्रोटेक्शन के लिए, मन की सुरक्षा के लिए भी भगवान और भगवान के भक्तों की सुरक्षा की आवश्यकता है। एक बार प्रभुपाद जी शायद राधा लंडनेश्वर में दर्शन कर रहे थे और दर्शन करने के बाद प्रणाम करने के बाद खड़े हो गए और राधा लंडनेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे और लगभग 5 मिनट तक प्रभुपाद जी ने आंख नहीं खोला और प्रार्थना कर रहे थे। कुछ भक्तों की जिज्ञासा हुई कि ठीक है, हम लोग तो अभी बद्धावस्था में है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, सुरक्षा की गुहार करें तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी तो मुक्त पुरुष हैं, उनको इतनी गंभीर प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है भगवान से, क्योंकि भगवान की पूरी पूरी सुरक्षा उनके ऊपर है। तो उनसे रहा नहीं गया, कुछ भक्तों से और प्रभुपाद जी के पास गए कि प्रभुपाद जी आप क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप क्या भगवान से बोल रहे थे, आपको किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता थी। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, मुझे आप अपनी माया शक्ति के प्रभाव से बचाना, मुझे आप अपनी माया शक्ति के प्रभाव से बचाना। और भक्त लोग सुन के थोड़ा हग्गे बक्के हो गए कि अरे प्रभुपाद जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी चिंता कारण है कि हमारे भक्त, हमारे शिष्य माया से नहीं डरते हैं, हमारे शिष्य माया से नहीं डरते हैं, उनको लगता है कि हमने माया को जीत लिया है। लेकिन कभी नहीं, माया कोई जीत नहीं सकता, माया को वही जीत सकता है जो भगवान के चरणों के आश्रित सदैव रहे, वही जीत सकता है। हाँ, नहीं तो एक बार राधानाथ महाराज का एक मैं कोट पढ़ रहा था तो वो बोलते हैं कि जैसे होता है ना कि 24 घंटा कृष्णा कॉन्शियसनेस माइंड रखो, कृष्णा को याद करो, बोलते हैं इसी प्रकार 24 घंटा माया भी काम कर रही है। 24 घंटा हम कृष्णा कॉन्शियसनेस रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 24 घंटा माया का भी पीछे से कार्य चल रहा है, वो भी चांस खोज रहेगी कब आपका 1-2 मिनट निकले और आपको वो फंसा दे। तो वो भी 24 घंटा इंगेज है अपना काम करने के लिए, इसलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, भगवान के आश्रित रहने की आवश्यकता है। भगवान और भक्तों के बीच का क्या संबंध है? भगवान चाहते हैं कि भक्त मेरी प्रार्थना करे, मेरी स्तुति करे, हाँ, और भक्त से भगवान की आशा होती है कि भगवान मेरी सुरक्षा करें, भक्त की आशा भगवान से कि भगवान मेरी सुरक्षा करें, और भगवान को यह आशा है कि भक्त मेरी स्तुति करे, मेरी वंदना करे, मेरी पूजा करे, और ये चलते रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था भागवतम के अंदर 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां कि बहुत ऊंचे पद से गिर गए सिर्फ भगवान का आश्रय और भक्तों का आश्रय न मिलने के कारण, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। एक तो भरत महाराज का और एक अजामिल का। अजामिल भी बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था, शील संपन्न ब्राह्मण था, लेकिन जब उसकी दृष्टि बुरी चीजों पर पड़ी और वो घर आया, घर आने के बाद भागवतम ऐसा वर्णन है कि उसने कुछ प्रयास किया कि मैं इस बुराई में न पड़ूं, मैं इसका चिंतन न करूं, लेकिन उसने सिर्फ अकेले प्रयास किया। हाँ, अकेले प्रयास किया। और भरत महाराज का और अजामिल जी का दोनों के प्रसंग में देखेंगे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की गुहार नहीं की, हे भगवान मैं फंस गया हूं। हाँ, या तो किसी भक्त का उनको गाइडेंस नहीं मिला कि देखो आप थोड़ा ट्रैक से बाहर जा रहे हो, आप संभल जाओ, हाँ, उन्होंने अपने से प्रयास किया। इवन भरत महाराज को तो भान भी नहीं हो पाया कि मैं फिसल रहा हूं, मैं अपने पद से गिर रहा हूं, उनको इस चीज की भान भी नहीं हो पाई और उस भाव अवस्था से उनका पतन हो जाता है। अर्थात कहने का आशय है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, इवन भक्ति करते हुए भी हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, भक्त संघ की आवश्यकता है। इसलिए हमारे आचार्यगण इस चीज को प्राथमिकता नहीं देते हैं कि हम अकेले चले जाएं, निर्जन स्थानों बैठ के भजन करें। भक्ति विनोद ठाकुर कितना भजन है इसके ऊपर, कि एकांत में भजन कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, अपने आप को चीटिंग कर रहे हो, अपने आप को धोखा कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, क्योंकि नहीं लड़ सकते हैं अकेले। भक्तों का संग, भगवान का आश्रय जरूरी है, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। और भगवान तत्पर भी रहते हैं सुरक्षा करने के लिए, और भगवान ही एकमात्र सुरक्षा कर सकते हैं, संसार में किसी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। क्यों हमको भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए? क्योंकि भगवान ही एकमात्र सुरक्षा कर सकते हैं किसी का भी। एक में प्रसंग बताया प्रहलाद महाराज का, दूसरा बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाभारत से, उत्तरा के संदर्भ में, कि जब उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा महल से दौड़ती हुई आती है और भगवान कृष्ण उस समय जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और दौड़ती हुई आती है और क्या बोलती है, पहला श्लोक उसका यही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम, पाही पाही महायोगी। भगवान के लिए तीन चार उपाधि दिया उसने, महायोगी, देवताओं के देवता और जगत के स्वामी, आप मेरी रक्षा करिए। तो एक प्रश्न उठता है कि उस समय वहां कुंती महारानी थी, पांचों पांडव लोग भी थे, और उत्तरा पांचों पांडवों के प्रभाव को जानती थी, भीम कितने बलशाली हैं, अर्जुन कितने बलशाली हैं, युधिष्ठिर महाराज कितने बलशाली हैं, सब लोग कितने बलशाली, कितना प्रभाव है। लेकिन उत्तरा जब महल से बाहर निकली तो क्यों भगवान कृष्ण के ही आश्रित हो गई? शुरू में ही उसने भगवान कृष्ण को क्यों पुकारा, पाही पाही महान योगी देवम देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस भय से मुक्ति के लिए पांचों पांडवों को बुला सकती थी, भीम को पुकार सकती थी, अर्जुन को पुकार सकती थी, युधिष्ठिर को पुकार सकती थी, बहुत तपस्वी थे, बहुत बल था उन लोगों के अंदर, लेकिन उसने किसी को नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? उसका उत्तर वो स्वयं देती है। क्या उत्तर देती है? नान्यम तद भयम पश्य, कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके सिवाय संसार में किसी को नहीं देख रही हूं कोई भय से रक्षा कर सके, कोई किसी की मृत्यु से रक्षा कर सके, भय से रक्षा कर सके। कैसे तुम ऐसा बोल रही है? क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि संसार में परस्पर सभी लोग मृत हैं, सभी लोग मर रहे हैं, सभी लोग मृत्यु के ग्रास हैं। क्यों क्यों कैसे उसको पता है कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है? क्योंकि महाभारत का युद्ध होता था, शाम को सब लोग अपने अपने खेमे में जाते थे और चर्चा होती थी, और चर्चा में हम जानते कि भगवान कृष्ण कैसे कैसे लोगों का जान बचाया, कितनी बार अर्जुन का जान बचाया, भीष्म का जान बचाया, युधिष्ठिर महाराज का जान बचाया। तो सब लोग मृत्यु के मुख में गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने आपको मृत्यु से निकाला है, और ये उत्तरा को भी पता है। तो मैं ऐसे लोगों के शरण में क्यों जाऊं जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? और हमारे ऊपर इतना विकट समस्या आया है अभी कि सोचते सोचते हमारा अंदर गर्भ खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो सकती हूं। तो जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, उनके शरण में जाके क्या फायदा है? तो क्यों ना हम उनकी शरण में जाओ जो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए उत्तरा महल से बाहर निकलती है और तुरंत भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार करती है, क्योंकि उसको पता है कि यही एकमात्र रक्षा दे सकते हैं। और इस नारायण कवच में हम यही देख रहे हैं कि किसी सुरक्षा की याचना नहीं की जाती है, भगवान भगवान भगवान, ये भगवान मेरी इस रूप में रक्षा करें, ये भगवान मेरी इस स्थान पर रक्षा करें, इसी प्रकार सुरक्षा की याचना की जा रही है। भगवान के भक्त असुर और सुर में यही अंतर है कि भक्तों को भी संकट मिलता है, ऐसा नहीं कि जब भक्ति करते हैं तो कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई संकट नहीं मिलेगा। भक्तों को भी संकट मिलता है, भक्तों को भी दुख मिलता है, लेकिन भक्त और अभक्त में ही अंतर है कि जब भक्त को दुख मिलता है, संकट मिलता है, भय होता है, तो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान पूरा आश्वासन देकर रखे हैं हाँ, कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो भक्त भगवान की शरण में जाते हैं और अभक्त अपने तरीके से अपनी सुरक्षा की तैयारी करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, लेकिन भक्त सफल हो जाते हैं। हाँ, जहां तक मार्ग की बात आई तो मुझे एक बात और याद आ रहा है, अभी तत्काल में प्रभुपाद जी के जीवन से संबंधित, कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका की यात्रा पे निकले और जल्दूत से जाते समय प्रभुपाद जी को बहुत ही गहरा हार्ट स्ट्रोक आता है 3 बार। और प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं अपनी डायरी में कि मुझे लगा कि मेरा जीवन अभी समाप्त हो गया, बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दुख हो रही थी, समुद्र भी बहुत उफान में था, बहुत उफान में था, और प्रभुपाद जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और प्रभुपाद जी बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही दुखी थे, लेकिन जैसा कि हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद लीलामृत हमको पता चलता है। एक्चुअली सुबह सुबह मैंने ये भक्ति विनोद प्रभु से पूछा कि इस मार्ग का आशय क्या है, तो प्रभु जी ने एग्जाम्पल हमको बताया कि कैसे प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे समुद्र यात्रा के दौरान, तो उनको भी बहुत बड़ा हार्ट स्ट्रोक आया, लेकिन प्रभुपाद जी पूरा पूरा डिपेंड थे भगवान कृष्ण की कृपा के ऊपर। और हम देखते हैं अभी तो एक फोटो भी बन के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी नाव पे बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण का प्रभुपाद जी के ऊपर हाथ है और भगवान कृष्ण ही नाव को चला रहे हैं। तो सेम ये प्रभुपाद जी का लिखित डायरी से लिया गया है, जो प्रभुपाद जी को स्वप्न आया, जो प्रभुपाद जी स्वप्न में देखा कि भगवान कृष्ण खुद नाव को चला रहे हैं, जलदूत को चला रहे हैं, और प्रभुपाद जी के सीने पे हाथ रख के उन्होंने मला और उनका दर्द दूर हो गया, सीने का दर्द दूर हो गया, प्रभुपाद जी पूरा पूरा ठीक हो गए। और उस समय जो जहाज का कैप्टन था वो भी लिखता है, और समुद्र जो इतने उफान पे था पूरा समुद्र शांत हो गया, कोई उत्पात नहीं समुद्र में। और जहाज कैप्टन उसमें लिखता है कि इतना मैंने यात्रा किया, समुद्री यात्रा किया, लेकिन इतना शांत समुद्र मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना शांत किसके लिए, कौन सुरक्षा दिया, भगवान ने, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा आश्रित थे। ये तो यात्रा के दौरान की बात होगी, प्रभुपाद जी बोस्टन पहुंचते हैं, हाँ 17 सितंबर 1965 बोस्टन पहुंचने के बाद जब प्रभुपाद जी वहां की गंदी दशा देखते हैं, वहां का जीवन स्तर देखते हैं, तो प्रभुपाद जी को बहुत क्षोभ होता है, बहुत दुख होता है। और प्रभुपाद जी कविता लिखते हैं, बड़ो कृपा कैल कृष्णा अधमेर प्रति, कि आपने तो बहुत कृपा किया मुझे लागे, लेकिन मुझे यहाँ करूंगा क्या मैं ऐसे लोगों के बीच में आके, जहां जीवन स्तर का कुछ ठिकाना नहीं है, रहने का कोई स्तर का ठिकाना नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में मुझे लाने का उद्देश्य क्या है। लेकिन फिर भी आपने मुझे लाया है यहां, तो आपका कुछ तो उद्देश्य होगा, आप ऐसे तो मुझे लाए नहीं, हाँ लेकिन मैं आपके पूर्त्या शरणागत हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं रख मुझे क्या करना है, लेकिन आप मुझे लाए हैं तो आपका कुछ उद्देश्य होगा। अभी आपको मुझसे जो भी करवाना है, आपने मुझे भक्ति वेदांत नाम दिया है, मेरे अंदर भक्ति गुण कुछ है नहीं, यदि भक्ति वेदांत नाम मुझे आपने प्रदान किया है तो आपको सार्थक करना है करो, या जैसे नचाना है नचाओ, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं। सब डाल दिया भगवान के ऊपर। भक्त क्या होता है, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है, मारे भी राखे भी जेच्छा तुम्हार, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, आपको रखना है रखो, मारना है मारो, यही है शरणागति। हाँ, और फुल विश्वास कि अवश्य रचिवे कृष्ण विश्वास पालन, यही है भक्ति, कि किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, यही है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे रक्षा हुई। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान प्रार्थना सुनते हैं। उसी प्रकार जब मैं वराहदेव को प्रसंग पढ़ रहा था थोड़ा, तो 3 प्रसंग है वराहदेव का है, परशुराम जी का है, श्री राम जी का है, थोड़ा मैं वराहदेव के ऊपर बोलूंगा। कि जब हिरणाक्ष को नारद जी द्वारा पता चल गया कि विष्णु कहाँ है, क्योंकि खोज रहा था कोई तो हमको मिले लड़ने वाला, उसको बहुत ताकत था, कोई से सामने नहीं आता था, लास्ट में वरुण देव के पास गया था, स्वर्ग लोक के सब देवता तो भाग गए, हाँ वरुण देव के पास गया, समुद्र में गया, समुद्र जाने के बाद हाँ उनकी पूरी विभावरी पूरी गया, वरुण देव आए और वरुण देव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है उनको लज्जित करने के लिए, कि हे वरुण देव जी, मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांग रहा हूं, आप तो बहुत बलशाली हैं, बहुत युद्ध जीता है आपने, मैंने सुना है कि आपने अश्वमेध यज्ञ भी किया है, हाँ मैं आपसे थोड़ा युद्ध की इच्छा चाहता हूं। वरुण भगवान समझ गए इसका प्रयोजन, क्योंकि इसको जीतना तो आसान नहीं है। वरुण भगवान बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया, मैं सब किया था लेकिन उस समय जवान था, मेरे पास ताकत थी, लेकिन अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं आपके सामने कैसे रुक सकता हूँ, मैं आपसे युद्ध भला मैं आपसे युद्ध कहाँ कर सकता हूँ। एक ही लोग हैं जो इस समय आपसे युद्ध कर सकते हैं, वो है पुराण पुरुष भगवान विष्णु, वही आपसे युद्ध कर सकते हैं इस समय, वही आपके टक्कर के हैं। तो अच्छा ठीक है, वो सुना और तुरंत चला गया नारद जी के पास, क्योंकि विष्णु का ठिकाना कहाँ है वो नारद जी जानते हैं, उसको ये पता था। और नारद जी के पास जाता है, नारद जी से मिलता है और पूछता है किधर मिलेंगे, तो बोले कि आपने जो धन छुपाया है, वास्तव में हिरणाक्ष जो था वो पृथ्वी का सबसे बड़ा डाकू था, सबसे बड़ा लुटेरा संसार में कोई हुआ तो हिरणाक्ष, सब लुटेरे उसके नीचे हैं। कैसे संसार के जो लुटेरे हैं डाकू, ये क्या करते हैं, इस पृथ्वी के धन को इधर से उधर करते हैं, इस बिल्डिंग के धन को इधर को इधर करेंगे, इधर लुटेंगे उधर जाकर रखेंगे, संपत्ति जुटाएंगे, लेकिन इसी पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। तो हिरणाक्ष ने क्या सोचा कि जो संपूर्ण धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य सब कहां पे है, पृथ्वी पे है। तो क्या किया उसने, पृथ्वी को ही चुरा लिया, इतना बड़ा स्मगलिंग किया उसने, पृथ्वी को ही चुरा लिया, सातल में छुपा दिया। तो नारद जी बताते हैं कि वो अभी जो आपका सबसे बड़ा धन है उसको लेने के लिए गए हैं, जल्दी जाओ नहीं तो धन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। और तुरंत जाता है रसातल में, और जब वो जाता है समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि वो भगवान वराहदेव पृथ्वी को अपने सूर पे रख के आ रहे हैं। तो देख के फिर व्यंग मारना शुरू करता है, अरे वनचारी तुम वन में घूमने वाले पशु इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इधर क्या काम है, तुम इधर क्यों आए, शब्द प्रयोग करता है उनके लिए, वन गोचर मृग, वन गोचर जो वन में भ्रमण करे, अभी सुअर कहां रहता है, वो पानी में थोड़ी रहेगा, तो वन में घूमना चाहिए, तो तुम इधर 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 क्यों आ गए, इधर तुम्हारा क्या काम है। अच्छा तुम आए हमारे इस पृथ्वी को ले जाने के, तुमको पता नहीं कि जो पृथ्वी है इसको ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के लिए बनाया है, ये हमारी संपत्ति है, तुम इसको चुरा क्यों लेके जा रहे हो, उनको चोर बनने लगा। और तुम्हारा यही काम है, तुम चोरी ही करते हो, तुम मायावी हो, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति है तो रखो और मेरे सामना करो, पहले लड़ो। तुम ऐसे ही माया का अलग अलग रूप धर के असुरों को ठगते रहते हो, लेकिन अभी तुम्हारा ठगी का धंधा नहीं चलेगा, अभी मैं तुमको बताता हूं, अभी इसी गदा से मैं तुम्हारा मस्तक फोड़ दूंगा, और जो तुम्हारा मस्तक फोड़ दूंगा तो और सारे जितने ब्राह्मण उमड़ हैं अपने आप, जैसे कि वृक्ष को काट दिया जाए तो अपने आप गिर जाते हैं वृक्ष, ऐसे अपने आप सब मर जाएंगे, हमको किसी की चिंता नहीं, तुम्हारा सर फोड़ दूंगा सबका हमारा खत्म हो जाएगा, रुको रुको घबराओ मत, अभी रुको क्यों भाग रहे हो। हालांकि ये बात सुन के बराह भगवान को बहुत क्रोध आता है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो उनके अंदर वेग आ जाता है लड़ने का, और सोचते हैं कि रखूं और दो चार उसको जमाऊं, लेकिन त्यों ही उनकी दृष्टि पृथ्वी माता पे जाती है। पृथ्वी माता भयभीत हो गई थी, पृथ्वी माता डर गई, क्योंकि बहुत ऊपर तक आ गए थे, उनको डर लगा पृथ्वी माता को, कहीं मुझे छोड़ेंगे और मैं फिर रसातल में चले जाऊंगा और युद्ध में पता नहीं क्या होगा, तो मेरा यहां से उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार कैसे भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो पृथ्वी माता भी भगवान की भक्त हैं, तो उनके भय को देख के उन्होंने अपना विचार बदल दिया, और जितने भी कटु वचन हिरणाक्ष ने बोला सब भगवान ने सुना, पहले सुनते गए और उसने दौड़ाया, भगवान कुछ बोल नहीं रहे, भले सोचे कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा, भले इसको सिक्योरिटी प्रदान करूंगा, और आए आते आते रसातल के ऊपर आ गए, समुद्र तल के ऊपर आ गए। उसके बाद भगवान अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को समुद्र के सतह पर रखा, और उसके बाद हिरणाक्ष आ गया, फिर भगवान पृथ्वी को स्थापित करना, पृथ्वी खुश हो गई, सतह के ऊपर आ गई, अपने स्थान पे आ गई। फिर भगवान बोलते हैं कि हाँ वास्तव में तुमने मुझे वन गोचर कहा, हम वन के प्राणी हैं, हम वन में घूमते हैं और कभी कभी हम लोग बाहर निकलते हैं वन से, क्यों वन से बाहर निकलते हैं, बोले तुम जैसे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कौन होता है, गांव का सिंह कौन होता है, कुत्ता। गांव का सिंह गलत है, घर का कुत्ता शेर होता है, गांव का सिंह कुत्ता होता है। तो कभी कभी हम लोग बाहम हैं, वन गोचर हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी अपने एरिया से बाहर निकलते हैं किसके लिए, तुम जैसे कुत्तों को खोजने के लिए, तुम जैसे कुत्तों का अपना आहार बनाने के लिए हम लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं। और तुमको बहुत घमंड था, तुम मेरा गदा से सर फोड़ने वाला, तो ठीक है अभी मैं तो आ गया, अभी फोड़ो अपना, लाओ गदा और मेरा सर फोड़ो, थोड़ा देखता हूं। और उसका बहुत घमासान युद्ध होता है, वर्णन है श्रीमद भागवतम में, और बहुत घमासान युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई होते होते शाम हो जाती है, ब्रह्मा देवता सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और इतना विकराल लड़ाई चलता है, इतना विशाल लड़ाई चलता है कि उसका कोई नेड़ा दिखते हुए नहीं, क्या नेड़ा होगा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, सब लोग भयभीत है। फिर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, अभी संध्या वेला आ रही है और संध्या वेला में असुरों की शक्ति और बढ़ जाती है, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी इसके साथ खेलिए मत, अभी इसका लीला समाप्त करिए, समय बहुत कम है, अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, अभी आप इसका वध कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनते हैं, देवताओं का विचलन देखते हैं, और उसी समय भगवान क्या करते हैं कि अपने गदा से हिरणाक्ष के ठुड्डी पे वार करना चाहते हैं, और बहुत तेज गदा मारते हैं भगवान हिरणाक्ष के ठुड्डी पे, लेकिन इतना फुर्ती से उस गदा के वार को रोकता है और इतना अचानक वार करता है कि भगवान के हाथ से गदा फिसल जाती है, भगवान के हाथ से गदा छूट के पृथ्वी पे गिर जाती है, और बहुत ही रोमांचकारी दृश्य हो जाता है। इवन भगवान भी इस चीज को याद करते हैं, बलि वामन प्रसंग में इसका वर्णन है कि जब वामन भगवान बलि महाराज से तीन पग भूमि मांगने के लिए आए, भिक्षा मांगने के लिए आए, तो उनका गुणगान कर रहे थे कि आपके पितामह, आपके पर पितामह कैसे थे, प्रहलाद महाराज कैसे थे, विरोचन कैसे थे, कितने बड़े बड़े दानी थे ये लोग, और आप किस कुल के हो मालूम है, आप उस कुल के हो जिसमें कि इतना बड़ा योद्धा हुआ कि संसार में इतना बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ। और वामन भगवान खुद बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उनसे एक बार युद्ध हुआ था हिरणाक्ष का, अभी भी उनको याद है। वो जब युद्ध के दृश्य को याद करते हैं तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि हालांकि मैं तो युद्ध जीत गया, लेकिन जीता हुआ हिरणाक्ष को ही मानते हैं, आप उस कुल के हो, कि मैं युद्ध तो जीत गया, कैसे कैसे मैं जीत गया मैं जानता हूं, लेकिन वास्तव में जो युद्ध जीता वो हिरणाक्ष ने जीता, इतना प्रभावशाली आक्रमण, बाप रे बाप, मेरे हाथ से गदा छूट गया, मैं भी चक्कर में पड़ गया था, इतना शालीन वो युद्ध करता था। तो भगवान भी इस क्षण को याद करते हैं, भगवान के हाथ से गदा छूट गया, और छूटने के बाद चाहता तो भगवान भी वार कर देता, लेकिन उसने बोला कि चल मैं निहत्ते वार नहीं करता, अपनी गदा उठा, भगवान को बोलता है, भगवान को ये शब्द याद था, और ये बलि महाराज को बताते हैं कि इतना बलशाली था हिरणाक्ष, तो भगवान गदा नहीं उठाते हैं, झुक के भगवान अपने सुदर्शन का आह्वान करते हैं, और जब सुदर्शन देखता है तो एकदम गुस्से में तिलमिला जाता है, एकदम गुस्सा उसको आ जाता है, और इसके बाद वो पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये सही में भगवान विष्णु ही तो है ये, तुरंत और तुरंत अपने गदा से प्रहार करता है, भगवान बाएं पैर से मारते उसका गदा छटक के दूर चला जाता है, वो वार करता है भगवान को मारने के लिए, भगवान पैर से मारते तो गदा ही लापता हो जाता है, गदा कहां चला गया कुछ पता ही नहीं। इसके बाद वो त्रिशूल निकालता है, बहुत खतरनाक त्रिशूल था, त्रिशूल से वो भगवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, भगवान सुदर्शन के द्वारा त्रिशूल को खंड खंड कर देते हैं। इसके बाद वो मायावी शक्ति का प्रयोग करता है भगवान को पराजित करने के लिए, अनेक प्रकार के मायावी शक्ति की रचना करता है, लेकिन जितनी भी माया की शक्ति रचता है सुदर्शन द्वारा भगवान सबका वध कर देते हैं। इसके बाद वो साक्षात प्रकट हो जाए, क्योंकि माया शक्ति सब खत्म हो गई, तो साक्षात भगवान सामने प्रकट हुआ और भगवान को अपने आगोश में पकड़ लिया, उसको लगा कि उसने भगवान हिरणाक्ष को पकड़ लिया, तो वास्तव में पकड़ा सही, लेकिन कुछ पल बाद देख रहा है कि भगवान बाहर खड़े उसके बंधन में है ही नहीं, तो एकदम गुस्से से तिलमिला गया। इसके बाद जाके भगवान के छाती पे वार करता है, छाती पे वार करने भगवान खड़े रहते हैं, देखते हैं कि ये तो, इसके बाद भगवान क्या करते हैं, एक तमाचा खींच के कनपटी मारते हैं, वो भगवान के छाती पे मार रहा था जाके बक्सी, भगवान एक पड़ाका मारते हैं, एक तमाचा मारता है कनपटी पर, उसके कान से खून निकल जाता है, नाक से खून निकल जाता है, दोनों आंखें बाहर हो जाती हैं, और बहुत सिंपल तमाचा भगवान ने मारा था, सामने सामने खड़ा होकर एक तमाचा मारता है और पूरा आंख निकल गया, कान से खून निकल गया, नाक से खून निकल गया, दांत टूट गया, और तुरंत खून वहन करता हुआ पृथ्वी गिर गया और मर गया। इस प्रकार सभी देवताओं की, ब्रह्मा की, क्योंकि बड़े बहुत बलशाली थे, इनके सामने भी कोई, इवन मैं वर्णन किया कि पूरे लोक में उन्होंने घूमा, हिरणाक्ष पूरे लोक में घूमता था, कोई उसके सामने आई नहीं रहा युद्ध करने के। इस प्रकार भगवान ने इतने बड़े संकट को दूर किया, भगवान ने रक्षा किया, देवताओं की रक्षा किया, ब्रह्मा जी की रक्षा किया, पृथ्वी की रक्षा किया। तो रक्षा सिर्फ भगवान कर सकते हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नरसिंह देव यही रक्षा कर सकते हैं। और भगवान यही आशा करते हैं कि लोग हमारे सामने आके रक्षा की गुहार करें और हम लोग भगवान की रक्षा पे आश्रित रहें, इस प्रकार भगवान और भक्त के बीच का संबंध बना रहे और हमारी भक्ति होते रहे। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया है, श्रील प्रभुपाद की। आप लोग कोई जिज्ञासा तो बोल सकते हैं, कुछ कमेंट है तो बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।